Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Phool bhar ke gilas chahiye. Aur jab ras khani hogi to tumhe पूरा कटोरी भर के चाहिए. और तुम ईमानदारी से बोलो, भगवान को थाली धराने का कटोरी कितना बड़ा रखा है? ईमानदारी से बोलो मुझे, जितने बड़े कटोरी में तुम रस खाते हो, क्या उतना ही बड़ा कटोरी है भगवान को थाली धराने के लिए? तो इतनी से कटोरी में एक चम्मच रस डालकर, एक तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाते हो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा. जमवा आओ सुनती रबर श्यामलार. वाह, क्या मस्ती से गा देते हो तुम, थाल धराते हो. हा, गुजराती लोग करते हैं? नहीं नहीं. हा, क्या प्रार्थना करते हैं? क्या उससे उनका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा. लेकिन तुम लोग कम होशियार नहीं हो. महाराज, भगवान तो एक है कि अनेक है? बोलो, भगवान तो एक है? सारी दुनिया का भगवान तो एक ही है ना. अब विचार करो, बंबई में कितने करोड़ की आबादी है? हैं? 100 करोड़ मान लो. 100 करोड़ तो इंडिया की है, 125 करोड़ बंबई की आबादी है. मान लो 125 करोड़ में से भी आधे भगवान को भोग लगाने वाले होंगे ना, होंगे कि नहीं? हैं? नहीं होंगे. आधे भी नहीं होंगे, थाली धराने वाले हैं. चलो 1/3 तो होगा ना. हैं? क्या 25 भी नहीं होगा? 25 करोड़ भी नहीं होंगे भगवान को थाली धराने वाले? नहीं होंगे. चलो 1 करोड़ तो होंगे ना. हैं? जरूर 1 करोड़ तो होंगे बंबई में. ओ, होंगे. मराठी भी भोग चारा धराते हैं भगवान के सामने, गुजराती, मारवाड़ी सभी धराते हैं भाई. मान लो एक एक चम्मच 125 करोड़, क्या होगा? बड़ा भारी बाल्टी भर जाएगा. एक बाल्टी क्या, कितना भर जाएगा? कितना खाएगा वो एक भगवान? सभी लोग थोड़ा 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 देंगे. हैं? हजारों फूल में से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा अपने चोंच में से लाती है, तो एक छत्ते में रखते रखते कितना होता है? 2-4 किलो हो जाता है. हैं? तुम कह सकते हो. इसलिए भगवान को तो सभी लोग खिलाते हैं, इसलिए उनका पेट भर जाएगा. ऐसी बात नहीं. तब क्यों अर्पण करना पड़ता है? तो भागवत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है. नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णः. परमात्मा तो निज लाभ पूर्ण, अपने स्वरूप आनंद से आनंदित है. वह भक्तों के द्वारा अर्पित क्षुद्र और भौतिक पदार्थ की अपेक्षा वो नहीं रखेगा. फिर क्यों अर्पण करते हो? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है. ये प्रहलाद की स्तुति का श्लोक है ये. वह क्योंकि इसीलिए हम परमात्मा को अर्पण करते हैं. नियम क्या है? बिंब को अर्पण किया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः मिलता है. बिंब को अर्पण किया हुआ चीज बिंब को तो मिले चाहे न मिले, प्रतिबिंब को तो जरूर मिलेगा. मिलेगा कि नहीं? ये भागवत का श्लोक है. क्योंकि परमात्मा बिंब है और जीवात्मा उसके प्रतिबिंब है. चिदाभास परमात्मा चित स्वरूप है, तो जीवात्मा चिदाभास स्वरूप है. इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब जीवात्मा है. और यदि कोई जीवात्मा बिंब को अर्पण करता है, प्रतिबिंब को स्वतः मिल जाता है. आप लोगों ने देखा हो, आप यदि किसी आईने के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर की ललाट में तिलक नहीं होता. तिलक नहीं है मान लो, और आप यदि चाहो कि इतनी सुंदर है, एक तिलक ललाट में नहीं है, हाँ, यदि उसमें तिलक लगा दूं तो कितना सुंदर होगा। या इसने साड़ी तो खूब मैचिंग किया लेकिन कान में झुमके इसने नहीं लगाया, इसके कान में दो झुमके भी बढ़िया लगा दूं, तो क्या प्रतिबिंब के कान में झुमका लगा पाओगे है? या प्रतिबिंब के ललाट में तिलक लगा पाओगे? प्रतिबिंब को श्रृंगार करना होगा तो किसका श्रृंगार करोगे? प्रतिबिंब का। और यदि तुमने बिंब का श्रृंगार कर दी, प्रतिबिंब सुंदर स्वतः सुंदर होगा कि नहीं है? बिंब का श्रृंगार कर लिया तो प्रतिबिंब स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा को अर्पण करने का मतलब यह है कि परमात्मा को अर्पण करने के बाद परमात्मा को जो प्राप्त होगा, परमात्मा की को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वतः ही जीवात्मा को अपने आप प्राप्त होगा, तभी तुम परमात्मा को अर्पण करते हो। यह भागवत का सिद्धांत है, तुम्हें करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि तुम्हें उसका फल प्राप्त होना है। देखो हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज थे, तो प्रश्न हुआ, महाराज जी का शरीर 85 में, इतनी 85 वर्ष की उम्र में शरीर, पंचभूतक शरीर नष्ट हुआ, और वो निमित्त बन गया जबड़े का कैंसर, निमित्त बन गया वो, कोई भी निमित्त बन सकता है शरीर जाने के लिए, बहाना खोजता है वो शरीर, हाँ, जब जाना होगा इसको तो ये हजार बहाना खोजेगा, उसके एक बहाने को बंद करो दूसरा बहाना खोजेगा, दूसरा बंद करो तीसरा बहाना खोजेगा, और उसी को निमित्त बनाकर जाएगा वो, तो बना के जाए। तो महाराज जी का अंतम स्थिति थी शरीर का, फिर भी सुबह 9 बजे महाराज जी ने प्रवचन किया और 10:30 बजे शरीर खत्म हो गया। बिस्तर में लेटे लेटे भक्त लोग गए दर्शन करने, प्रश्न किया, महाराज जी के परम शिष्य थे, माताजी थी, उनने प्रश्न किया, महाराज आप जैसे इतने महान संतों को इस तरह का कष्ट क्यों होता है? इससे अच्छा तो महाराज ये आजकल की जो बीमारी है वो सबसे अच्छी है। कौन सी बीमारी? तुम लोग समझते तो बहुत हो, वो सबसे अच्छी है। अटैक आया फट गया, किसी कहीं बिस्तर में नहीं पड़ना, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, तुरंत एक झटका लगा गया, बस आ किया हा हो गया, वो सबसे अच्छी है। लंबे बीमार होकर पड़े रहे, सभी लोग हैरान हों परेशान हों, तो महाराज जी ने संक्षिप्त जवाब दिया है, तुम गलत कह रही हो। लंबे बीमार यदि होते हैं कोई, उसका फल उनकी सेवा करने वालों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है बोलो? ये दृष्टि आज के युवाओं को समझना जरूरी है। उनकी कहां दृष्टि? वो माता पिताओं के प्रति ये दृष्टि होना बहुत जरूरी है, ये भाव है ही नहीं आज के जनरेशन में। महाराज जी ने जवाब दिया, मान लो कि कोई मां कोई बाप लंबे बीमारी पड़ा हुआ बीमार, और उसका बेटा या बहू उसकी सेवा कर रही है, कर रहे हैं, उनको सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, बाप के मरने के बाद, मां के मरने के बाद उसके नाम के धन और संपत्ति जो है वो तो प्राप्त होगा ही होगा, किसको? सेवा करने वाले को। साथ में लंबे समय तक सेवा करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो हार्ट अटैक से मर गए, वो बड़े अन्याय कर रहे हैं, किसके प्रति? किसके प्रति? अपने बहू बेटों के प्रति। भौतिक संपत्ति तो वो छोड़कर जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं, लेकिन उनको पुण्य का अवसर नहीं दिया उन्होंने, ये बड़ा अन्याय है। ये दृष्टि रखनी चाहिए वृद्धों की सेवा करते समय, माता पिता की सेवा करते समय, गुरु की सेवा करते समय फायदा किसको है? हाँ? मेरी मां तत्काल नहीं मरी, मुझे सेवा करना पड़ रहा है, उसका धन जो होगा वो तो मुझे मिलेगा, साथ मुझे जो पुण्य मिलेगा, धन ये लोक के लिए होगा, पुण्य परलोक के लिए हो जाएगा, बड़ी कृपा कर रही है। ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक सेवा में प्रवृत्ति रुचि नहीं बढ़ेगी। महाराज जी ने कहा वो अन्याय कर रहे हैं जो तुरंत मरते हैं। मैं समझ के आ गया कि नहीं? आप लोगों को अन्याय करते हैं। उन्होंने अपने बहु बेटों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सेवा करने का अवसर नहीं दिया, और सेवा करने का अवसर प्रदान न करना, बोलो अन्याय है कि नहीं? पुण्य से वंचित हो गए कि नहीं? बोलो है। अब माता पिता गुरु आदि जो बीमार हो रहे हैं उनको अपेक्षा है कि नहीं मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे? उनको जरूरत है कि नहीं, अपेक्षा है कि नहीं? इस पर मत जाओ। लेकिन बहु बेटों को यह अपेक्षा है कि नहीं कि मुझे पुण्य मिले, तो सेवा करनी चाहिए। किसकी? अपने आप पुण्य के अवसर प्राप्त हो रहा है, यह तो गौरव की बात है भाई। धन तो मिल रहा है, मिल रहा है, पुण्य भी मिल रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज क्षुद्र फल देने वाले तो बहुत हैं संसार में, हाँ, लेकिन उन क्षुद्र फल देने वालों की मैं न सेवा करूंगा, न उनकी स्तुति करूंगा, न भजन करूंगा, न गुणगान करूंगा, न उनके आश्रय में मैं जाऊंगा। मैं तो आपके ही सेवा की अपेक्षा रखता हूं। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा, न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम्। हाँ, श्री सूक्त का पाठ करो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं? लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी देगी वो, है? कुबेर की स्तुति करो, इंद्र के लिए यज्ञ करो, इंद्र प्रसन्न होगा तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन हे शिवा, हमको ये पता है आपके महिमा के सामने इंद्र तो क्षुद्र है, कुछ भी नहीं है इंद्र, हाँ, वो भी आपकी सेवा करता रहता, आपके सेवा के लिए वो भी तड़पता रहता है, उसके क्या महानता है भाई? सारी दुनिया के जो बड़े से बड़े हैं देवता, विबुधा देवता, वे सब बहुत हैं, जरा सा प्रशंसा कर दो, उनकी स्तुति गान कर दो, प्रसन्न होकर बहुत देने वाले हैं वो। अरे भूत प्रेत भी देते हैं वो, हाँ, यूं तो खाली देवता नहीं, भूत प्रेत भी देते हैं, वो खुश हो जाए तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ क्या होगा? क्षुद्र ही तो होंगे वो, क्षुद्र फलदा। आप लोगों ने शिव पुराण सुनी होगी। शिव पुराण में भगवान शिव का एक परम भक्त का नाम आता है, उपमन्यु। शिव पुराण में उपमन्यु की शिव भक्ति का इतना सुंदर वर्णन है। उपमन्यु एक बालक है। अब आप लोग अन्यथा नहीं लेना, कोई वैष्णव हो तो नाराज हो जाओगे, नाराज नहीं होना। वो शिव पुराण को प्रमाण नहीं मानते हैं, भागवत को प्रमाण मानते हैं, समझे कि नहीं? जबकि शिव पुराण वेदव्यास जी की, भागवत भी वेदव्यास जी की, कहते तो है ना, लेकिन श्रीमद् भागवत ने जो कहा वो उसको तो प्रमाण मानेंगे, अन्य पुराणों ने जो कहा उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है भगवान कृष्ण के शिव मंत्र के दीक्षा गुरु उपमन्यु है। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से शिव मंत्र पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, सीधा शिव पुराण में लिखा है, पढ़ लो। उपमन्यु इतने महान शिव भक्त थे। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो वो लोग नहीं मानते। भागवत में लिखा हो तो बोलो, शिवपुराण की बात हम नहीं मानेंगे। भगवान कहीं उपमन्यु से दीक्षा लेगा? अरे भाई ये तो ईश्वर की लीला है, वो क्या क्या नहीं लेगा। गोपिनियों से जब मक्खन लेता है तो उपमन्यु से दीक्षा लेने में क्या अर्ज है बोलो? गोपिनियों से छाछ लेता है, गोपियों से छाछ लिया कि नहीं? वो भी नाच नाच कर लिया है, खूब नाच दिखाया, तब एक गिलास छाछ दी, चले गए। आहा क्या आनंद आ गया है। लियो जी, साहित्यकारों ने ये चर्चा किया है कि नहीं बोलो? है भगवान श्री कृष्ण की लीला में है? चोरी चोरी करके खाना पड़ रहा है, है? चोरी कर करके खाना पड़ रहा है कि नहीं? मक्खन तुम लोग जो भोग लगाते इतना देते, उससे पेट भरता नहीं है, तो फिर चोरी करके खाते हैं। भोग लगाते समय इतना थाल भर भर के लगा देते तो उनको चोरी करना ना पड़ता, और तुम थोड़ा थोड़ा लगा देते पेट भरता नहीं, तो फिर चोरी करते हो, और क्या करेंगे। उपमन्यु की कथा आती है शिवपुराण। भगवान शिव के परम भक्त थे, तपस्या। शिव जी के साक्षात्कार के लिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या की। बालक थे 5 साल के, उपमन्यु का उम्र 5 वर्ष का था, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव और जैसे उपमन्यु, जैसे नचिकेता। हाँ देखो, बूढ़े होने पर बिगड़ जाते हो। हाँ हमारे हिंदी भाषा में तो ये कहते हैं कि साठी हुआ कि सठी आ गया, बूढ़े होने पर और बिगड़ जाते हैं। बेचारे बालक को जो भक्ति लग जाएगी, बूढ़ों को इतनी जल्दी भक्ति नहीं लगती है। सारे प्रमाण तो यही है ना, शास्त्र में भरे पड़े हैं। बच्चों के भगवत भक्ति का उदाहरण तो कई है पुराणों में। भगवान शिव के अनन्य भक्ति करते थे उपमन्यु, तो उनके खाना पीना सब छोड़ दिया, तो उनके तपस्या के चलते पृथ्वी में डगमगाने लग गया। कैलाश में बैठे थे भगवान शिव, तो वो ऐसा लगा कि भूचाल आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उपमन्यु तपस्या कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, प्राण को रोध कर दिया, निरोध कर दिया, वृष्टि वायु समष्टि में जाकर धारणा कर दी, और धारणा समष्टि वायु को ही उन्होंने रुद्ध कर दिया, तो बस हाहाकार। किस लिए? बोले आपके दर्शन की अभिलाषा से उपमन्यु तपस्या कर रहा है। बोले वो मेरी अभिलाषा रखता है कि कोई और वस्तु रचाता है, है? जाके परीक्षा करते हैं। पुराण में उल्लेख आया है कि भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के जहां उपमन्यु तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गए, और उसको संबोधन किया, ए बेटा तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो किस लिए? उपमन्यु ने कहा मैं शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो इंद्र ने कहा, यानी शिव ने कहा, इंद्र का रूप धारण करके आया था, उन्होंने कहा बेटा इंद्र की तपस्या क्यों, माने शिव की तपस्या क्यों करते हो? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। अमंगल्यम शीलम, मैमनी स्तोत्र में आया ना, श्मशाने स्वाक् क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सचरा चिता भस्मा लेपो सर्गव निर्कोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। मैं स्वर्ग का साक्षात राजा हूं इंद्र, देख ले ऐरावत हाथी, देख ले भाई जयंती माला, ये देख मैं स्वर्ग का राजा, तुझे जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, तेरे सारे मनोरथ पूरा कर सकता हूं मैं। उस फक्कड़ जोगी की क्या तू भक्ति करता है, छोड़ दे उसकी भक्ति, कुछ भी नहीं है उसके पास, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुल, न गोत्र, तू तो ब्राह्मण है ना बेटा? बोले हां मैं तो ब्राह्मण हूं, और शिव तो कुल गोत्र का मालूम ही नहीं है, खानदान क्या है, है? किस गोत्र के हैं शिव जी, किस कुल के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो, और लगता है उनके आचरणों से तो वो तो परम शूद्र हैं। लेकिन पुष्पदंताचार्य जी ने एक बात कह दी है, कोई भक्त भगवान का आचरण अमंगलमय है इतने रूप में स्मरण करता है तो भी उसका मंगल हो जाता है। देख लो, भगवान शिव का आचरण शूद्र जैसा है इतने यदि आचरण स्मरण करता है तो भी उसका परम मंगल हो जाता है। स्मर्त्री नाम परम मंगलमसी। हाँ, तो बड़ी निंदा कर दी भगवान शिव की। उपमन्यु ने कहा कि देख इंद्र, तू यहां से चले जा, तो मेरे आराध्य देव की तू निंदा नहीं करना, और ज्यादा निंदा करता है तो मैं तुझे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोटा बालक हूं, तो शक्तिशाली है, समर्थ है, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शिव की तू यदि निंदा करता है, योग अग्नि से मैं अपने शरीर को ही जला के खत्म कर दूंगा। हाँ बोल, तो क्या चाहता है तेरे सामने, मैं अपने शरीर को योग अग्नि से जलाकर खत्म कर दूं, और या तेरी शिव निंदा को चुपचाप सुनता रहूं, वो हमसे नहीं होने वाला है। तो जाता है कि मैं शरीर को नष्ट कर दूं, बोल। मुझे शिव के अलावा और किसी से कुछ लेना नहीं है, तू क्या देगा, बोल, तेरे पास क्या है? तेरे पास जो है वो शिव भक्ति और भगवान शिव के अनन्य भक्ति के सामने क्षुद्र है, बस। क्षुद्र फलदा सहस्रम वर्तन्ते विबुधा, जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा। तो जब उसने, उपमन्यु ने इंद्र के सामने इस प्रकार की बात कही, तो भगवान शिव को लगा कि ये तो अनन्य है, मेरे अलावा दूसरे के किसी की कामना नहीं। अनन्य शब्द का अर्थ वैष्णव लोग दूसरी बात करते हैं, अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, लेकिन अनन्य शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने दूसरे ढंग से किए। हां, अनन्य माने अद्वैत, वैष्णव लोग अद्वैत नहीं करते, अपने से भिन्न का अस्तित्व न होना वही अनन्य है। वैष्णव कहते हैं विष्णु के अलावा और किसी का भजन न करना वो अनन्य है, और हम वेदांती आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, न अन्य, अपने अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, यानी ब्रह्म के अलावा परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं, जीव भी केवल प्रातिभाषिक मात्र है, पारमार्थिक तो ब्रह्म ही है। पारमार्थिक में ब्रह्म के अलावा और किसी के सत्ता न होना, इसको क्या कहते हैं, अनन्य, न अन्य, ये अनन्य। दूसरा तो है ही नहीं, तो द्वैत कहां से आएगा भाई, अनन्य का अर्थ तो द्वैत का अभाव, ये एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये देख लो मुंडक उपनिषद, मांडू के उपनिषद में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वहां दूसरा कहां से आएगा और अन्य होगा, अन्य भक्ति कहां से होगी। अनन्य ऐसा अर्थ किया है वो शंकराचार्य जी ने। तो उपमन्यु ने देखा कि ये मेरे अलावा और किसी को भजता नहीं है, नहीं तो जीवन ही खत्म करने को तैयार हो गया, देख लो। तो तुरंत भगवान शिव ने उनका जो ऐरावत हाथी था इंद्र का, वो तो उपमन्यु के देखते देखते वृषभ हो गया। क्या हो गया, वृषभ का रूप धारण कर लिया, और जो इंद्र का रूप सामने खड़ा था, देखते देखते साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बेटा हम तुमसे प्रसन्न है, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। तो उपमन्यु ने कहा कि मेरी और कोई अभिलाषा नहीं, आपके चरण की सेवा बायक और मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि एक नीति है, नीतिकारों ने कहा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी का पांव जहां पड़ा हुआ हो उसके अंदर सभी जीव जंतुओं का पांव आ जाएगा, आएगा कि नहीं? भगवान के चरण के अंदर तो सब कुछ आ गया, चरण पकड़ लिया तो सब हो गया। देखो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विदिवि, सारा तीनों लोग चतुर्भुवन का सब कुछ भगवान शिव के एक चरण में है और हमको तो दो चरणों की सेवा करने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए बोलो? है कामधेनु गाय यदि जिसके घर में बंधी हो उसको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बोलो? है कामधेनु गाय जिसके घर में बंधी हो, आपने सुना है कि नहीं? वशिष्ठ के आश्रम में क्या था? कामधेनु गाय नंदी थी, नंदिनी, नंदी, नंदिनी, क्या एक ही चीज है? नंदिनी थी। तुम लोग जो है नंदी शब्द का अर्थ सांड समझ रहे होंगे, इसीलिए मेल फीमेल कहो ना, और क्या, नंदिनी थी। चलो कामधेनु गाय हमने कहा था, कामधेनु गाय थी और उसी से वशिष्ठ जी सब कुछ योगक्षेम किया करते थे। इतना बड़ा गुरुकुल था, उनको प्रेमपुरी आश्रम में आकर डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं थी। थी बोलो सिमन भाई, वशिष्ठ जी आए प्रेमपुरी आश्रम में डोनेशन मांगने? आत्मानंद तो आया होगा, आश्रम चलाना है ना आत्मानंद को, है आत्मानंद को आश्रम चलाना है, गुरुकुल चलाना है, वृद्धाश्रम चलाना है, वो तो डोनेशन मांगने आया होगा। लेकिन वशिष्ठ जी आए, क्यों आएंगे भाई? कामधेनु गाय है, वो तो क्या है? उनको जो संकल्प करो वो पूरा हो जाए। अब कामधेनु गाय में वो शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि उसके बछड़े ने शिव की सेवा की, तो वो शिव भक्ति का, शिव जी की सेवा करने का फल मां को भी प्राप्त हो गया और वो शक्ति उसको आ गया कि उसके सामने बैठकर जो कल्पना करे वो वस्तु उपलब्ध हो। तो वो भगवान शिव के चरण में, क्या वो कामधेनु गाय की शक्ति नहीं है क्या? अब वो चरण की सेवा जिसको प्राप्त हो, सान्निध्य जिसको प्राप्त हो, उसको फिर क्या अन्य फलों के लिए अन्य देवताओं की उपासना करने की जरूरत पड़ेगी? ये देख लो गीता में कहा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यदवद तदवद कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। हाँ, मुमुक्षुओं की सारी कामना तो परमात्मा में पहुंचने के बाद सब कामना शांति को प्राप्त हो गई, अब कामना कोई रहा ही नहीं। जैसे सारे नदी दौड़ दौड़ कर समुद्र में पहुंचते हैं और समुद्र में पहुंचने के बाद नदियों की गति रुक जाती है, इसी तरह जीवात्माओं की मन की वृत्ति जो काम्य पदार्थों के प्रति की कामना वृत्ति है, वो परमात्मा को प्राप्त होने के बाद वो काम्य वृत्ति खत्म हो जाती है, कुंठित हो जाती है। अब वो भाव उपमन्यु को प्राप्त हुआ। पार्वती के बारे में भी यही है, आए कथा है पुराण में, भगवती पार्वती पहले जन्म की सती और दूसरे जन्म में पार्वती, उन्होंने निश्चय कर लिया कि शिव के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। तो एक बार भगवान शिव खुद गए कि क्या ये मेरे अलावा और किसी को नहीं चाहती है, मुझे ही चाहती है, देखे तो सही। रूप बदलकर पहुंच गए और पार्वती के सामने शिव की बड़े भारी निंदा की। हाँ, बड़े भारी निंदा की शिव जी की उन्होंने, अरे वो भूत प्रेतों के साथ रहता है, उनके साथ तो कैसे रहेगी, है उसको छोड़ दे, उसका भजन करना छोड़ दे, शादी करनी हो तो मेरे से कर। हाँ, उस भूत प्रेत लेकर चलता है, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, बड़ी निंदा कर दी। तो सती ने भी यही कहा है जो उपमन्यु ने जवाब दिया है, मेरे सामने ऐसी बात मत करो, तुम यहां से चले जाओ, शिव को छोड़कर मैं किसी अन्य को स्मरण कर ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती हूं, और तुम ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तो मैं मार नहीं सकूंगी, मैं अपने शरीर को, क्योंकि मैंने शरीर को परित्याग करने का प्रैक्टिस किया है। किसने? तुम लोगों ने नहीं, पार्वती ने। उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां लिया था बोलो, जब सती थी तब लिया था कि नहीं? दक्ष के सामने, दक्ष के यज्ञ में स्वयं अपने योग अग्नि से प्राणायाम करके अपने चित्तवृत्ति को अग्नि में धारणा की और अग्नि, अमूर्त अग्नि वहीं मूर्त हो गया और शरीर प्रदग्ध हो गया। वो ट्रेनिंग तो, वो अभ्यास तो पार्वती को है ना।